ॐ नमो भगवते वासुदेवाय भगवते चैतन्यचन्द्राय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जये महोदीरये श्रीगुरुवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः आनन्दलीला मायाविग्रहाय हेमाङ्गदिव्यम् सचिसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। भावराधिका माधुरी आस्वादन सुखकाज जय श्री कृष्ण चैतन्य जय कलि प्रगटे ब्रजराज। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्ति रस पिपासु कृष्ण कथा अनुरागी वैष्णव वैष्णवी श्रोताओं को सादर वंदन करते हुए हृदय से धन्यवाद देते हैं कि गौरांग गुण गाथा श्रवण करने हेतु तो आप सभी पधारे हैं। कल हम सुन रहे थे चैतन्य महाप्रभु जी ने रामानंद राय से पूछा, प्रभु कहे हो हयो आगे कह हार राय कहे दास्य प्र प्रेम सर्वसाध्य सार। हे रामानंद राय, भक्ति के सर्वोच्च साध्य शिरोमणि का आगे वर्णन करो। राय ने कहा, दास्य प्रेम। हे चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने आप को दास मानकर उनकी सेवा के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने आप को समर्पित कर देना, ये सारे साध्यों का सार है। इसके अंतर्गत इसके बाद और इसके बाद वाला श्लोक श्री यमुनाचार्य जी के वचनों को हमने आपके समक्ष रखा था। भवंतमेवा, श्लोक है बस वही, नुचरम निरंतरम। आपका निरंतर सदा के लिए अनुचर, अनुचर मतलब सेवक, भवंत में हो जाओ। प्रशांत निशेष मनोरथांत, ये मेरे मन में अनेक प्रकार के वासनाएं, संकल्प विकल्प इच्छाएं मुझे शांत नहीं रहने दे, अशांत। जैसे कोई निर्मल स्थिर सरोवर हो और उसमें कोई पागल हाथी धड़ाम से गिरे तो सरोवर का जल जैसे आंदोलित हो जाता है, ऐसे ही मेरे मन में इच्छा रूपी मद वाला गजराज ऐसे तांडव करता है कि मुझे शांति नहीं। कदा हमें कांति कनित्य किंकर प्रहर्षयिष्यामि सनाथ जीवितम्। रंगनाथ के प्रेमी भक्त श्रीपाद रामानुजाचार्य के गुरु श्री यमुनाचार्य जी श्री विष्णु भगवान से कहते हैं, कदा हम, मेरे जीवन में सुनहरा सौभाग्य सूर्य कब उदित होगा कि नित्य किंकर, मैं आपका सनातन सेवक नित्य दास के रूप में अनुभव करूं और आप भी मुझे अपना दास मान लो, तो क्या होगा? प्रहर्ष, मेरे अंदर एक सुख आनंद का अनुभव होगा। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को सुख नहीं मिल सकता जो अनाथ हो, जो पुत्र अपने पिता के आश्रयहीन हो या माता के आश्रयहीन हो या पत्नी अपने पति के आश्रयहीन हो, जो अनाथ हो उसके शारीरिक सुविधा या फिर उसकी सुरक्षा के विषय में वो सदैव चिंता में रहेगा। इस संसार में आप सभी देख सकते हो कि हम किसी सुदृढ़ समर्थ के आश्रय में हो तो निश्चिंत होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम जहां नौकरी करते वो बॉस पैसा वाला हो उतने से ही काम नहीं चलेगा, उदार भी हो उतने से भी नहीं चलेगा, पत्नी बच्चों के प्रति उदार रहेगा, लेकिन करुणावान दयावान भी हो, अपने सेवकों को अपना मान के उसका ख्याल रखता हो, तो ऐसे की नौकरी करके हमको लगता है कि थोड़ा नहीं तो कभी गंग के दरबार गाय दी, गाया गंग ने अकबर के दरबार में, सुख सुम की सेव, सुम मतलब कंजूस कृपण, कृपण की नौकरी करना उससे मरना अच्छा है, क्योंकि वो चमड़ी जाए दमड़ी नहीं जाए, अपने लिए यूज नहीं करता, हमें कैसे चारा नहीं बढ़ाएगा बढ़ाएगा बताओ। इसलिए नौकरी भी करना है गुलामी भी करना है तो देखना चाहिए ना किसकी करे, और सबकी 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 बात करते हुए राजा महाराजा तक चले जाओ, लेकिन इस संसार में जब आप तत्वस्थ रूप में एनालाइज करोगे तो आपकी बुद्धि पकड़ेगी कि बड़े से बड़ा इंद्र भी और बड़ा से बड़ा ब्रह्मा भी सब राजा गिरधारी के दास है। अकबर की नमाज में वो फकीर गया, कुछ मांगने गया था क्योंकि अकबर खैरात बांटता था आगरा में, लेकिन देखा तो अकबर या अल्लाह नमाज कर रहा था, फकीर ने रिटर्न ले लिया, गया था देखा रिटर्न, बोले क्यों? अकबर जागा, बोले बुलाओ उसको, क्यों ऐसे ही जा रहा है? बोले मैं आपके दरबार में आया था बादशाह समझकर, यहां आके पता चला आप भी भिखारी है। बोले कैसे भिखारी है? आगरा के मालिक है, पूरा मुगल सम्राट हमारा, हिंदू तुम अधीन हो हमारे। बोले नहीं, मैं यही समझ के आया था कि आप बादशाह, लेकिन यहां आके आपको देखा तो आप मांग रहे थे या अल्लाह खुदा बख्श दे, मतलब भीख मांग रहे थे। अरे मैं खुदा से भीख मांग रहा था, लेकिन तुम्हारा तो बादशाह हूं ना, तुमको जो चाहे वो दे सकता हूं, पावर है, समर्थ हूं। उसने कहा वो भी मुझे समझ में आता है, लेकिन फिर भी मैंने रिटर्न ले लिया। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा, बादशाह समझ के आपके दरबार में आया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप जिससे मांगते उसको डायरेक्ट ही क्यों ना मांगू भाई। अब डायरेक्ट एमडी से पहुंचो तो फिर पोस्ट मैनेजर के पास क्यों जाए बताओ? तुमको जो दिया है वही जाओ ना, अब तो मांगना ही है, मांगना और मरना एक है, तो फिर ऐसी जगह मांगो कि फिर मांगना न पड़े। बुद्धि तो लगाना पड़ेगा ना। यमुनाचार्य जी कितना सुंदर निवेदन कर रहे हैं, सनाथ मैं जब अपने आप को, आप जगन्नाथ को स्वामी के रूप में स्वीकार करूंगा तब सुखी हो सकता, दूसरा उपाय नहीं है। नहीं है तो चिंता ही रहेगी। आज देखिए संसार में स्त्री पुरुष, पैसा वाला गरीब, अनपढ़ गवार या बुद्धिमान डिग्री वाला, सब चिंता से भरे हैं। क्यों? क्योंकि आश्रय सही नहीं है। इसलिए भरोसा किस पर करे, ये आज प्रश्न है। पड़ोसी पर भरोसा किया, बेकार निकला। आजू वालों पर, बाजू वालों पर, दिल्ली वालों पर, किस पर भरोसा करे? बोले एक काम करो, ऊपर वाले पर करो। ऊपर वाला भी दिखता कहां है? तब हमारे भक्त कहते ऊपर वाला आज नीलाचल वाला बन गया है, नीलाचल वाले से प्रार्थना करो वो सुनेगा। ऊपर वाला नहीं तो थर्ड फ्लोर में रहते, फाइव फ्लोर में कंजूस रहता है मारवाड़ी, क्या कर बताओ। तो ऊपर वाला मतलब वो ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला मतलब नीलाचल वाला। नीलाचल शंख चक्र गदा पद्म धर, जिसके हाथ में शंकर है, चक्र है, सुदर्शन, उसका आश्रय लेना है। जब तक नहीं लोगे, अपने आप को दास नहीं मानोगे और जगन्नाथ को स्वामी नहीं मानोगे, तब तक सुख की एक बिंदु नहीं प्राप्त होगी। कहीं भी जाओ, घूम लो, घूमते ही रह जाओ। अनाथ कौन है यहां, जब दीना नाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। वो अपना हाथ छोटा करके रखे है, लेकिन जगन्नाथ के हाथ इतने लंबे हैं कि उससे बड़े किसी के लंबे हाथ। वो दासिया बावरी का नारियल लेना था ना, तो जगन्नाथ ने अपना हाथ 22 बाजार तक, गरुड़ कस्तम तक बढ़ा दिया था। अभी ऐसा रखे है, लेकिन वो सबसे ज्यादा उनके और सबसे लंबे उनके हाथ। लेकिन हमें भरोसा नहीं है, हमारी कमी है। इसलिए सत्संग हमें साधना के अंतर्गत प्रेरणा देता है कि हमें दास्य भक्ति, भगवान के दास, वो हमारा स्वरूप धर्म है, हम दास है। और मानेंगे नहीं तब तक सुखी नहीं हो सकते। तो कब मैं मानूंगा कि प्रहिष्यामि स नाथ, आप मेरे नाथ हैं। अक्रूर जी ने कहा ना कृष्ण से, जब मथुरा में लैंड किए कृष्ण को, तब कहा कि आप मेरे घर पधारिए और सनातन कुर्वन, आप हमें सनात कीजिए प्रभु। कृष्ण बलराम को अक्रूर जी लेने गए थे मथुरा में, तो अपने घर निवेदन करते हुए अपने को सनात कह रहे, क्योंकि अब तक सब कुछ है लेकिन अनाथ, आपके आने से हम सनात हो। वास्तविक नाथ जगन्नाथ है, द्वारिका नाथ है, श्रीनाथ है, रंगनाथ है, बद्रीनाथ है। भारत में इतने नाथ है, फिर भी हम मानते नहीं, इसलिए अनाथ की तरह घूम रहे, भिखारी की तरह, जानते नहीं ना। और इसलिए चिंता रूपी चुड़ैल हमें पकड़ी हुई है, सब चिंता से भरे। चिंता ने प्रतिज्ञा ली है कि बेटा तुझे चीता पर न चढ़ा दूं तब तक छोड़ूंगी नहीं। लेकिन कृष्ण के नाम कीर्तन स्मरण चिंतन कोई करता है, तो चिंतन ने भी प्रतिज्ञा लिया है कि जो मुझे करेगा उसे श्याम सुंदर की गोदी में बिठा दूंगा। अब बताओ आपको चिता पर चढ़ना है कि श्याम की गोदी में जाए, आपके ऊपर है। चिंता चिता समायुक्त बिंदु मात्र न विशेषत, चाहे चिंता और चिता आप लिखिए, एक ही अंतर है वो बिंदु का, बिंदु हटा दो तो चिता हो जाएगा, बिंदु लगा दो तो क्या हो जाएगा? चिंता। चिंता चिता समायुक्ता, बिंदु मात्रेण विशेषत। लेकिन एक विशेष अंतर और भी है, वो क्या है? चिता दहति निर्जीव। ये चिता जो है ना, प्राण चला जाए फिर उस शरीर को जलाती है, लेकिन चिंता जीते जी जलाती है। वो एक बार जलाती है मरने के बाद, और वो दिन में बार बार जलाती ही रहती है, जलाती ही रहती है। लेकिन जिस दिन आपके मन में आ जाए मेरा तो तू ही है स्वामी, कहूं मैं और किसे अपना। हे जगन्नाथ, हे कृष्ण द्वारकाधीश, हे गिरधारी, आप मेरे स्वामी हो, मैं और किसे अपना कहूं। मेरी हर सांस में तेरा नाम, मुझे किस बात की चिंता। हमारे हैं श्याम सुंदर, हमें किस बात की चिंता। अब तक तो बाहर घूम रहा था वो क्रोधी कामी लोभी दुर्जन, इन लोगों के चरणों में सर झुका रहा था, इसलिए चिंता गई नहीं। लेकिन अब बुद्धि आया, सत्संग में आया, तब चरण में रख दिया सर तो हमें किस बात की चिंता। अब तो हमने जगन्नाथ के गिरधारी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है, अब हमारी चिंता कौन करेगा? वो करेगा। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, अब चिंता वो करेंगे। आप क्यों अपने अपने सर पर टोप लेके घूम रहे हो भाई, उनको दे दो। गीता में उन्होंने कहा है योगक्षेमम वहामि हम अनन्य चिंतयन्तो मां, जो मेरा चिंतन करता है ना अर्जुन, उसकी चिंता मैं करता हूं। और शांति मिलेगी नहीं, रामायण में लिखा है सुखी मीन जहां नीर गाधा, जिमी हरि शरण एक नबाधा। मछली है ना, आप दूध में डालो या उसके जुला जुलाओ, उसको रसगुल्ले में डालो, कुछ भी करो, उसे शक नहीं मिलेगा। मीन मछली वही सुखी रह सकती है जहां नीर अगाधा, जहां पानी हो। ऐसे ही जीव मनुष्य वही सुखी रह सकता है जहां भगवान की शरण हो। बिना भगवान की शरण लिए सुख नहीं, शांति नहीं। अशांतस्य कुतो सुखम, भगवत गीता में। इसलिए भजन भगवान का करना है। बोले कोई प्रमाण है? एक दो नहीं। विभीषण को प्रभु ने वर दे दिया अपना। विभीषण ने क्या किया? बस एक बार राम जी के चरणों में सर को झुकाया, काम फिनिश। लंका अविचल राज तुम करो। यश भी दिया, धन भी दिया, सुख आनंद भी दिया, सुरक्षा भी दिया, और दास बनाकर धाम भी दे दिया। क्या कमी है बताओ? और उसी राम का, उसी कृष्ण का हम गुणगान कर रहे हैं, उसी का कर रहे गुणगान, हमें किस बात की चिंता। इसको हमारे आचार्य के शब्दों में कहूं, भजहूं रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणारविंद रे। भजहूं रे दुर्लभ मानव जन्म सत संगे, दुर्लभ मानव दुर्लभ मानव जन्म सत संगे, में आना संकीर्तन करना ये शरण है गिरधारी। और अगर दास बनकर कर रहे हो तो सुरक्षा वे भगवान करते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय के 16 नंबर श्लोक में अर्जुन कहते हैं 1:15-16, अस्त्राणि अमोघ महिमानि निरूपितानि। उस कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य, जयद्रथ जैसे महारथियों के द्वारा अमोघ ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्यास्त्र मेरे पर आ रहे हैं। अस्त्राणि अमोघ महिमानि, जिसकी महिमा अमोघ है, अमोघ मतलब कभी फैल न जाए। ब्रह्मास्त्र ऐसा अस्त्र है, इंद्र का दिव्यास्त्र ऐसा अस्त्र है, पशुपात शिव जी का अस्त्र है, ये ऐसे अस्त्र है कि काम करके आएंगे। ऐसे अस्त्र मुझ पर चल रहे थे ना अपस्पृश, लेकिन मुझे कोई टच नहीं कर पाया। अपस्पृश, स्पृश मतलब स्पर्श करना, ना अपस्पृश निहरिदास इवासुराणी। जैसे हरिदास के ऊपर भी हिरण्यकशिपु इतना शस्त्र मारा लेकिन एक भी अस्त्र प्रहलाद को छुआ नहीं, प्रहलाद के कोमल शरीर में एक रेखा नहीं कर खींच पाया। बड़े बड़े अग्नास्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि, ठीक उसी प्रकार कृष्ण की कृपा से कुरुक्षेत्र में मेरा नाम विजय था लेकिन सार्थक किया कृष्ण ने, क्योंकि मेरा रथ चलाया विजय रथ। और प्रहलाद पर भी यही हुआ था। श्रीमद् भागवत 7:5-33, 33-34 आप देख लीजिएगा। सुखदेव जी कहते हैं, मूल श्लोक तो नारद जी कहते हैं राजसूय में, दिग्गजे दंत शुकेश्च, बड़े बड़े दिग्गज बुलाया हिरण्यकशिपु और उसको मदिरा पिला के मतवाला करके भेजा प्रहलाद के सामने, बोले पैर देके कुचल दो। लेकिन वो दिग्गज प्रहलाद के आगे आकर हाथी सलाम करता था प्रहलाद को, जय सिया राम, सलाम वालेकुम। और वो महावत को गिरा के प्रहलाद को बिठा देता था ऊपर। दंत शूके, बड़े बड़े कोबरा आदि सर्पों को बुलाया गया जिसमें महाविष भरा था, और एक रूम में सब सर्पों को डाल के प्रहलाद को डाला, और प्रहलाद अपने आप को भगवान का दास मानकर भगवान नाम स्मरण कर रहे हैं। हुआ क्या, सारे नाग नाच रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, उसको लग रहा है कि बीन बज रहा है। उसने आधे घंटे बाद खोला, बोले अब तो प्रहलाद मर गया होगा, लेकिन देखा हिरण्यकशिपु के सैनिकों ने सब नाग क्या कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं। डसा एक भी नहीं, कहीं डस लेता ना पार्षद हो जाता, क्योंकि प्रहलाद के शरीर में प्रेम इतना है कि विष क्या करेगा, सामने असर हम ही फूका विजय। माया भी अभी ससार, बड़े बड़े जादूगरनी मायाओं को बुलाया गया प्रहलाद को मारने के लिए, क्या क्या नहीं किया, हीम वायव अग्नि सलीले पर्वता आक्रमणे अपी, बड़े बड़े पर्वत डाले गए, पर्वत से उसको डाला गया, अग्नि में डाल दिया गया, हीम में रखा गया, बर्फ में -100°C में डालो इसको, सूख जाएगा, बर्फ हो जाएगा, कुछ नहीं होता था। बड़ी बड़ी आंधी तूफान जहां चलती है उस जंगलों में ले जाया गया, कुछ नहीं होता। गर दाने अभी विष पिलाया गया, भूखा रखा गया, सब कर लिया, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं न शशाक यदा हंतु, हंतु शशाक मार नहीं पाया, बहुत ट्राई किया मार ही नहीं पाया। अपाप असुर सुतम, जिसके अंदर कोई पाप नहीं था, केवल प्रेम था, ऐसा प्रेमी प्रहलाद कुछ अपकार नहीं करता था, विरोध नहीं करता था, एक ही बात करता था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सुखदेव जी एक बात बड़ी सुंदर लिखते हैं, अब चिंता हिरण्यकशिपु की बढ़ गई, चिंता दीर्घतमा प्राप्तम, देखो जो भगवान का नाम लेता है अपने आप को भगवान का दास मानता है उसको चिंता नहीं होती, चिंता इसको बढ़ गई कि ये मर क्यों नहीं रहा, क्या करे, कुछ नहीं होता था। जितने तारे आकाश में उतने शत्रु होए, जाकर कृपा रघुनाथ की बाल ना बांका होए, क्या कर पाएगा कोई। कृष्ण जब सुरक्षा करते हैं, अरिक्षितम तिष्ठति देव रक्षितम सुरक्षितम अपि देव हतो विनश्यति, पूरी दुनिया आपकी सुरक्षा करे लेकिन कृष्ण मारना चाहे कौन बचा पाएगा, और सारी दुनिया मारने के लिए आ जाए लेकिन जगन्नाथ जहां हो कौन मार पाएगा। भगवान के दास बनना ये सारे साध्यों का सार बोला जा रहा है, और दास सब है, शिव ब्रह्मा इंद्र सूर्य चंद्र, और आज जिसका महोत्सव चल रहा है ना महाराष्ट्र में, वो गणपति भी इसके दास है। रमा शंभु ब्रह्मा मारा पति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे कदाचित कालिंदी तट विपिना संगीत तरलो मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद्य मधुप रमा शंभु ब्रह्मा मर पति गणेशार्पित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी पवतु मे। शिखरणी छंद है, जैसे जैसे जंगल में वनराज सिंह चलता है ना ऐसे झूमते हुए गाया जाता है, मरे मरे की तरह नहीं, जगन्नाथ पूरे विश्व ब्रह्मांड का अधिपति का दरबार भरा हुआ है, और ब्रह्मा शिव आदि जिसकी आरती उतारते हैं, सामगा गायंतियम सामगा, सामगान जिसका गान करता है, वेदानाम साम वेदो अस्मि भगवान गीता में कहते हैं, विभूति गिनाते हैं, इन छंदों में गाया गया है। गणेश भी इसकी अर्चना करता है, इस जगन्नाथ की दास मानता है अपने आप को, गणेश क्या उसके पिताजी भी मानते हैं। रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति सब कैलाश में बस जगन्नाथ की गुण भोले बाबा गाते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा दुर्भाग्य कि भोले बाबा के परम प्रिय पुत्र और भगवान के प्रिय भक्त को ये लोग पिक्चर के गाने सुना रहे हैं, शीला की जवानी चल रहा है। गणपति बोले कैलाश में भी जो मुझे नहीं मिलता तुम लोग हमको सुना रहे हो। अब ये गणपति का आदर है कि अनादर है आप सोचिए। गणपति तो प्रेमी है, भक्त है ना, खुद भगवान की सेवा में रहता है, कृष्ण का भजन करने पर उसका दास बनने पर सब अपने हो जाते हैं। ये बात हमें समझनी है, फिर कोई चिंता नहीं किसी भी बात की, हमें एक ही चिंता होनी चाहिए कि बस उसका नाम होना चाहिए। इसलिए हम आपको सुना रहे थे वो भजन कि अब इस दास पर कृपा करिए, क्या कि मुझे अपने दासों में शामिल कर लीजिए। जैसे यहां कह रहे हैं कि सनाथ जीवितम नित्य किंकर, मुझे आपका नित्य किंकर मान लीजिए आप, और मैं सामने से कहता हूं मैं भी मानता हूं आपका किंकर, अब आप स्वीकार कर लीजिए। इसी बात को महाप्रभु ने कहा ना, अनंदत नुंज क्या श्लोक है आगे, किंकरम पतितम माम विषमे भवाम्बुदो, मैं पतित हो चुका हूं इस भवसागर में, लेकिन मैं हूं कौन ओरिजिनली, वो आई एम, मैं कौन हूं, मैं आपका सेवा आपका किंकर हूं। किंकर किसे कहते हैं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, ऑलवेज बोलता रहे और करता भी रहे, खाली बोलता ही नहीं रहे। मैं आपके लिए क्या करूं, हमेशा से रेडी, सेवा में ऑलवेज रेडी रहता है बिना आलस के, उसका किंकर कहते, मैं आपका किंकर। और जब हम भगवान को अपने आप को भगवान का किंकर मान लेते हैं तब भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, ऐसे ही पूरे विश्व का वो पालन करते हैं, लेकिन अपने भक्तों का विशेष करते हैं। समोहम सर्वभूतेषु, गीता में कहते हैं ऐसे मैं सबके प्रति समान हूं, विश्वात्मा विश्वंभर सबका पालन करता हूं, लेकिन जो मेरा भक्त बन जाता है तब तो उसके लिए सेपरेट बात हो जाएगी। गीता के उसी श्लोक के उत्तर लाइन में लिखा है, मैया जो मेरे बन गए तब तो मैं उनका हूं, फिर मुझे
हुई इस देह पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना, हुई इस देह पर उन्हीं के हाथ में है हार, हमें किस बात की चिंता, उन्हीं के हाथ में है हार, हमें किस।
अब आप चिंता छोड़ दीजिए, चिंतन करिएगा कृष्ण क्या लीला किए। जैसे यहाँ रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु भगवान का चिंतन करते हैं, और जब हम भगवान का चिंतन करते हैं तो हमारी चिंता वो करता है। क्या करना है इसका,
तू ही नाम तारण सबे का जसारण, धरो उसका धारण निवारण करेगा।
जब आप उसका ध्यान धरोगे तो आपके सारे काज का वो ध्यान रखेगा।
न था दांत माँ को दिया दूध माँ को, खबर है खुदा को सबर वो भरेगा।
अरे आपके मुंह में दांत नहीं थे तब भी माँ के स्तन में दूध कौन बनाया, उसको पता है।
तेरा ढूंढ सीना मिटे दिल का दीना, जिन्हें पेट दीना वो आप भरेगा। मुरादम कहे जो मुकद्दर के अंदर, जिन्हें टांक मारा नटारा टरेगा, जिन्हें टांक मारा नटारा टरेगा।
कौन है विश्व ब्रह्मांड में भाईका लाल, हनुमान जी कहते रावण राम का दास हूं मैं, और कौन है राम, काल के भी काल, जाते काल काल डराई, काल जिससे डरता है उस कृष्ण का मैं दास हूं। किसका डर मुझे, बस हम जानते नहीं ना, ये हमारी गरीबी है, दरिद्रता है। इसलिए यहां बोला जा रहा है सात्य सार क्या है, हम कृष्ण के दास हैं। इसलिए अभी हाय हाय मत करो, क्या करो, हरी हरी निताय गौर प्रेमानंदे, हरी बोल बोलना है, हरी नाम संकीर्तन करना है, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और हम आप वहम में है भक्तों, आपको लगता होगा मेरे परिवार का पालन मैं करता हूं, मेरी सोसाइटी का पालन मैं करता हूं, देश का, अपने अपने स्तर पर जो भी व्यक्ति सोचते हो, वास्तव में सबका पालन विश्वंभर जगन्नाथ करते हैं। आप जिस महाराष्ट्र में रहते हो ना, उसके राजा थे छत्रपति शिवाजी महाराज। एक बार महाराष्ट्र में जब शिवाजी का शासन था ना, तब अकाल पड़ा, अकाल, और अकाल में ऐसा हो गया कि वृष्टि नहीं हो रहा था, तो अन्न उत्पादन नहीं हो रहा था, और अन्न उत्पादन के अभाव में प्रजा समस्या में आ गई।
जय जय श्री राधे,
इसमें सारे मंत्र आ जाते हैं। प्रजा पीड़ा प्राप्त करके प्रजा को पुत्रवत पालन करने वाले हमारे दयालु उदार क्षत्रिय शिरोमणि राजा छत्रपति शिवाजी ने अपना खजाना खुला छोड़ दिया, क्योंकि राजा कर इसीलिए लेता है प्रजा की, प्रजा की सुरक्षा के लिए, जब जरूरत हो तो पड़े देना चाहिए। आजकल की तरह नहीं, स्विस बैंक में डालो, उसको भी काम में ना तक मर जाता है, वो लोग यूज करते ऐसा नहीं था, शुद्ध थे। खजाना खुला कर दिया, बोले कोई चिंता मत करो, जब तक किसी के यहां कुछ नहीं होता है, हमारे खजाने से जितना चाहिए उतना अन्न, खाने जीने पीने की सामग्रियां आप प्रजा के लिए। अब ऐसा हो गया ना, तो अच्छा चल रहा था, प्रजा भी जय जयकार कर रही थी शिवा की, शिवाजी महाराज की। लेकिन शिवाजी महाराज के गुरु थे स्वामी रामदास, शिवाजी महाराज के गुरु थे। और शिवाजी जब उसको प्रणाम करने आश्रम में गए तो गुरुजी ने पूछा, शिवाजी कैसे चल रहा है? महाराज आपकी कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। बोले सुना है कि दुकाल है प्रजा में, तो बोले है कुछ कहर कुदरत का, लेकिन हमने हमारा कर्तव्य निभाया है, खजाना खुला छप का पालन कर रहा हूं। गुरु जो होता है ना वो अंदर बाहर दोनों तरह देखता है कि शिवाजी पालन, मतलब उसको वहम है कि बोले सबके लिए हमने सुविधा किया है जितना बनता है उतना, मतलब गुरुजी, गुरु उसे कहते हैं कि शिष्य के अंतर को भी पकड़े, समझे। ऐसे गुरु दुर्लभ है, हर ही शिष्य धन शोकन हर ही। आज ऐसे गुरु है, शिष्य का धन हरते हैं लेकिन शिष्य का संशय टेंशन बढ़ाते देते, इसको गुरु नहीं कहते। दुर्लभा बहुवा लोके सगुरु, कौन गुरु दुर्लभ है? शिष्य से संताप हार का, जो शिष्य का शोक हर ले, चिंता हर ले, उसे भक्ति विज्ञान देके सुखी कर ले, क्योंकि सब विज्ञानार्थम गुरु मेवा भी कच्चे थे ना। इसीलिए उसने कहा कि चलो शिवाजी थोड़ा शहर करके आते हैं, थोड़ा चल, अभी ये दुर्गंध आई ना थोड़ी इसको गुरु जी को शिवा के चरित्र में, इसलिए चलो आपके साथ थोड़ा वॉकिंग करना है, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, ले गए अनुग्रह करके। गुरु बड़ा बुद्धिमान होता है, हमारे गुजरात में, गुजरात के प्रांत में चलता है, आपने नाम शायद सुना होगा गुरु गोरखनाथ का। गुरु गोरखनाथ के गुरु कौन थे जानते? मच्छिंद्र, उसका नाम क्या था? मच्छिंद्र नाथ, और उसका चेला गोरखनाथ। एक बार गोरखनाथ और मच्छिंद्र नाथ चल रहे थे, दोनों जा रहे थे रास्ते पे, उसके साथ और बहुत सारे शिष्य थे, सब सन्यासी, बैरागी, फक्कड़, अलग अलग निरंजन वाले सब। अब हुआ क्या, गुरुजी मच्छिंद्र जी बीच में चल रहे थे, कभी आगे कभी पीछे हो जाते हैं ना चलते हुए, जैसे हम परिक्रमा करते, कभी कोई आगे बढ़ जाए कोई पीछे बढ़ जाए, एक दो फुट दस फुट आगे पीछे हो जाता है चलते में। तो गोरख जी आगे हो गए दो तीन कदम, मच्छिंद्र पीछे हो गए, और चेले भी और भी शिष्य थे साथ में। तो मच्छिंद्र जी को पता नहीं क्या सूझा, गोरखनाथ के सर पर टिंग टिंग टकोरा मारा ऐसे, जैसे हम लोग बेल हो जाते सर पे ऐसे मारो, ऐसे मारो टक, जैसे नोक करते हैं ना। तो आजू बाजू सब देख रहे थे कि इतना बड़ा ज्ञानी सन्यासी मच्छिंद्र और गोरख भी तो कोई कम नहीं थे वैराग्य में, उसको कैसे मार रहा है, समझ में नहीं आ रहा था आजू बाजू चलने वाले को। ऐसे भी महाजन महान व्यक्ति की चरित्र समझ में भी आता नहीं जल्दी से, सिद्धों का चरित्र समझ में आया नहीं क्यों ऐसा कर रहा है। लेकिन गोरख जी ने पीछे देखा, भाई हमको कौन मार रहा है। आप यहां महाराष्ट्र के चरित्र में भी सुनेंगे ना, तो गोरा कुंभार नाम का भक्त हुआ ना, नामदेव जी और ज्ञानेश्वर की जब सभा लगती थी ना, तुका मुका सब सुखाराम सब की, तब गोरा भाई इसको ये टकोरे मारने का उनको वो दिखाता है, वो मटला मटका पक्का होता है ना, टिंग टिंग होता है, कुंभार जो होता है वो जो चेक कैसे करता है, मशीन थोड़ा था पक गया, उसको टिक टिक करके चेक किया जाता है। तो वो सभा में सबको ऐसे करते थे, कोई बुरा नहीं मानता था, क्योंकि वो देखते थे वो कितना शुद्ध हुआ है। ड्रेस में वेश में तो वैष्णव हो गए हैं, लेकिन गुणों से कितने हैं वो तो गुरुजी चेक करेंगे ना। टिंग टिंग किया तो गोरखनाथ ने पूछा, गुरुजी आप जो ढूंढ रहे हो इसमें नहीं है। बोला कुछ नहीं, टिक टिक किया, तो गोरख पीछे देख के मच्छिंद्र के अपने गुरु को क्या बोले, आप जो ढूंढ रहे हो वो इसमें नहीं है। तो मच्छिंद्र जी ने बोला, लेकिन नहीं है ये तो है। किसी को समझ में नहीं आया, ये लोग क्या बात करे, कौन सा कोल्ड वर्ड हो रहा है, सब मतलब कर रहे हैं। इसने कहा कि आप जो ढूंढ रहे हैं वो नहीं है, और ये कह रहे हैं कि नहीं है ये तो है, मतलब इसने चेक किया कि आप जो ढूंढ रहे हो ना, अभिमान, अहम करता, मैं हूं, ऐसा मुझ में अभिमान नहीं है। तो गुरु जी ने कहा, अभिमान नहीं है ये भी तो एक अभिमान है। मैं नहीं हूं ये तो है ना।
आजकल लोगों के पास ज्ञान बहुत होता है, लेकिन ज्ञान का अभिमान उससे डबल होता है, ये उसको पता नहीं होता
कि मैं ज्ञानी।
इसलिए आज सबसे बड़ा है अज्ञान कि मुझे है ज्ञान। यही अज्ञान है कि मुझे है। वास्तविक ज्ञान यह है कि मुझे ज्ञान नहीं है। समझ में आती है सारा उल्टा पुल्टी बातें? आप लोग बड़े बुद्धिमान हो इसलिए तो बंबई में टिक गए हो, कई लोग घर चले गए। जो टीका है मतलब कुछ तो है, चूना लगाने में एक्सपर्ट है कुछ तो, इसलिए टीका है यहाँ। चाहे कहीं से भी आया हो, गुजरात से या मारवाड़ से, या यहाँ टीका है मतलब कुछ तो है उसके पास दिमाग, क्योंकि उसने कितने को भेज दिया वो तो गांव वाले जानते होंगे। इसलिए समझते ही होंगे मैं आशा रखता हूं। शिवाजी को लेकर गए और एक पत्थर आया बीच में बड़ा, शिवाजी के पास तलवार था। रामदास जी ने कहा मारो इसको तलवार, गुरुजी पत्थर पर मारो, और जैसे ही मारा पत्थर दो भाग में बट गया। पत्थर दो भाग में बट गया, वहां थोड़ा सा छोटा सा जल का गड्ढा था, उसमें से एक मेंढक खींच करके बाहर आया। मेंढक तो हमेशा कूदता रहता है ना। रामदास ने कहा शिवा इसको भी तू ही खिला रहा है ना, ये भी तेरे कारण ही जी रहा है ना। शिवाजी ने कहा नहीं, इसको तो हमने कभी राशन दिया नहीं। बोले ऐसे अनगिनत करोड़ों जीव है जिसको जगन्नाथ खिला रहा है, तू किस वैम में घूम रहा है। अरे महाराज क्षमा करो। शिवाजी का बत्ती जला, गुरु जी ने असली मेंटोस दिया कि दिमाग ये काम है ना, गुरु का यही काम है कि वास्तविक ज्ञान दे। कुछ मॉडर्न लोग बैठे तो समझे, इसलिए मैं ये बोला, बड़ी ऊंची बात है लेकिन सरलता के लिए आप लोगों के लिए। समझ में आ गया कि नहीं नहीं अभिमान नहीं, हम तो दास है, सबके नाथ स्वामी जगन्नाथ है, कृष्ण है। और इस बात को जो सिखाए समझाए भगवान कृष्ण है और हम इनके दास है ऐसा सिखाए वो गुरु है, इसको गुरु कहते हैं। और गुरु प्रभुपाद ने पूरे विश्व में क्रांति किया कि सबको ये सिखाया समझाया शास्त्रों से कि हम कृष्ण के दास है, ममे वांशो, हम उस परमात्मा के अंश है, और अंशी होने के नाते उस अंशी की सेवा करना ये हमारा स्वरूप धर्म है। और वो नहीं करेंगे तो कुछ भी कर लो सुखी नहीं हो सकते, सुख नहीं पाओ। इसीलिए राय कहे दास्य भक्ति प्रेम सर्व साध्य सार। राय जी ने कहा दास भक्ति ही सर्व सार है और दास सभी दास है, अकेले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जारे जेछे नचाए तेछे करे नित्य, सब दास है। और श्रीमद् भागवत में तो जितने महापुरुषों की कथा है, महाजनों की, देवताओं की, ऋषि मुनियों की, सब ने एक स्वर से कहा है कि हम कृष्ण के दास। और सुखदेव गोस्वामी ने अत्रि, गौतम, वशिष्ठ, व्यास और नारद जैसे, परशुराम जैसे ऋषि मुनियों के सामने भागवत जी में कहा कि यह हरिदास रूपी शब्द सर्वोत्कृष्ट शब्द है, क्योंकि भगवान विष्णु जो विश्व ब्रह्मांड के अधिनायक है वे अपने दासों के दास बन जाते हैं। और ऐसे दासों में समर्पण किए हुए कई सब हरिदास है, लेकिन तीन मुख्य दास है, उद्धव, युधिष्ठिर और हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ नाम का नाम किसका लिया, जो हमारे गिरधारी ने उठाया था, गिरिराज महाराज की। गोवर्धन पर्वत भगवान के जितने दास है उसमें वर्य श्रेष्ठ है। दस, दसवा अध्याय, 47 chapter 56 number slow। सरिद्र वन गिरी द्रोणी वीक्षन कुसुमितम द्रिमान कृष्णम संस्मारयन रे मे हरिदास व
व्रजो कसा।
उद्धव जब गए व्रज में तो वृंदावन के वृक्षों को देखा जहां से राधा कृष्ण प्रेम रस बह रहा था। उसने यमुना जी को देखा, वहां से भी कृष्ण प्रेम, मिट्टी में भी कृष्ण प्रेम की सुगंध, चारों ओर बस केवल कृष्ण प्रेम की वर्षा हो रही थी। ये हरिदास उद्धव तो झूमते रह गए। सुखदेव जी कहते 10:75 10:75:27
हरिदासस्य राजर्षे राजसूय महोदयम् नैव तृप्तं प्रशस्सन्त पिबन् मृत्यो अमृतम् यथा।
राज सूर्य यज्ञ किया, न भूतो न भविष्य ऐसा किसने, हरिदास ने, युधिष्ठिर ने।
राजसूय
हरिदासस्य राजर्षे, उस राजर्षि के यज्ञ में, राज सूर्य में क्या हुआ, सभी लोगों ने, विश्व ब्रह्मांड के सारे देवता, सारी देवियां, सारे ऋषि, सारे क्षत्रिय
जैसे किसको पी रहे थे, कृष्ण के सौंदर्य मुख चंद्र की अमृत सुधा माधुरी को पी रहे, सब कृष्ण दर्शन कर रहे।
नहीं वा तृप्तन, लेकिन तृप्ति नहीं हो रहा था, और देखे माधव को, और देखे ऐसा लग रहा।
नहीं वा तृप्तन प्रशस्सन्त,
प्रशंसा कर रहे, कैसे, पीवन, मानो कृष्ण को देख नहीं रहे, क्या कर रहे, पी रहे।
मृत्यो अमृतम यथा,
जैसे मृतमान व्यक्ति को कोई अमृत दे दे तो पीता ही रहेगा ना थोड़ी, क्योंकि एक तो मीठा लग रहा है, ऊपर से औषधि और आनंद भी आ रहा है, ऊपर से रोग भी बढ़ नष्ट होगा, स्वस्थ लाभ होगा और अमर बनेंगे, क्यों, कौन छोड़ेगा बताओ।
राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीनो,
सूरदास ने भी याद किया,
तामे झूठ उठाई सबसे ऊंची, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची।
राज सूर्य यज्ञ में द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र गए थे, लेकिन युधिष्ठिर को प्रणाम करके बोले, भैया मेरे लायक कोई सेवा है, बोले जितने ऋषि मुनि आते हैं ना उसका चरण आपको धोना है। खुश हो गए, एक्स्ट्रा अपने से किए, झूठे पत्तल उठाए, तामे झूठ उठाई। सूरदास जी क्या कहते,
राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ उठाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे
चला था ना, इस सभा में सारे देवता उपस्थित है, सारे ऋषि मुनि उपस्थित है, सारे क्षत्रिय विश्व ब्रह्मांड के उपस्थित है, उसमें प्रथम पूजा किसकी होगी, जो सर्वगुण संपन्न हो उसकी होगी।
उद्धव जी और विदुर जी का मिलन हुआ, भागवत में यमुना के तट पर कथा है, आपकी जानकारी के लिए 3:2:11:13
नंबर श्लोक।
उद्धव जी कहते हैं, यद्धर्म सुनो बत राजसूये निरीक्ष दृक्स्वस्तिमयनम त्रिलोक।
3:2:13 उद्धव जी कहते हैं कि धर्म सुनो, धर्म का पालन करने वाले धर्मराज युधिष्ठिर राजसूये, राजसूय यज्ञ में क्या हुआ था, दृक्स्वस्ति आंखों के लिए जो अमृत है, औषधि है और मंगल है, ऐसे कृष्ण का दर्शन पूरी प्रजा को मिला था। और कृष्ण क्या है, ऐसा लग रहा था, क्या लग रहा था,
कार्स्येन चाद्यगतम विधातो अरवाक सूतो कौशलमीतमन्यत।
मानो विधाता ने, ब्रह्मा ने जितनी अपनी कला है व्यक्ति बनाने की, सृष्टि बनाने की, मनुष्य बनाने की, वो सारी कला इसमें खर्च कर दी कृष्ण। अब ये इनकी उपज नहीं है, कृष्ण सबको बनाए है, लेकिन बाह्य रूप से देखा जाए तो ब्रह्मा विधाता है,
लेकिन ब्रह्मा के पास जितना कला कौशल है सब किसने लास्ट एंड पीस क्या है लास्ट सब किसने खर्च हो गया, इस महापुरुष को बना इतना सुंदर, और सारी प्रजा ने लाभ लिया था, इसका लाभ सारी प्रजा ने लिया था कृष्ण के। अरे युधिष्ठिर महाराज ने भी यज्ञ किया था ना, शुद्ध भक्त है युधिष्ठिर, अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कि लोग कहे कि वाह मेरा नाम हो जाए, पूरी दुनिया कृष्ण को देखे, कृष्ण के प्रभाव को देखे, कृष्ण के स्वभाव को देखे, इसलिए यज्ञ किया था युधिष्ठिर का। राजसूय यज्ञ करने के पीछे भी कृष्ण भावनामृत का प्रचार ही करना था। इसका भक्त का कोई भी प्लान होता है भगवान के नाम का गुण का लीला का प्रचार, लेकिन एक सौभाग्य हो ही जाता है कि जो भगवान के नाम का प्रचार करता है भगवान उस भक्त का उससे ज्यादा कर देते हैं। प्रभुपाद ने प्रचार किया तो कृष्ण ने प्रभुपाद का प्रचार उनसे भी ज्यादा कर दिया, क्योंकि भगवान अपने भक्त का यश बढ़ाते हैं, क्या करें। इस बात को पितामह भीष्म भी जानते हैं, स्तुति में कहते हैं, जब कृष्ण की पूजा हो रही थी ना एक व्यक्ति था जिसने विरोध किया, क्या नाम है वो व्यक्ति, ऐसा है कि जिसका शादी का कार्ड बना, बारात गई लेकिन बिना दुल्हन के रिटर्न आया, उस केस को वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है उस प्रभु जी का। वो शिशु था और पाल था, बेचारा इतना खर्चा किया शादी करने गया लेकिन दुल्हन कन्हैया भगा ले गया, और ये बाबा जी का कुछ पाया नहीं बेचारा, इसलिए कृष्ण से द्वेष करता था, बोला कृष्ण की पूजा नहीं होनी चाहिए। बोले इसमें सबसे श्रेष्ठ है, ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ है व्यास, व्यास को पूछो। तो व्यास ने कहा शास्त्र सार शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण आराध्य पुरुष है। शिव जी ने कहा, सब ने कहा, और ये मान ही नहीं रहा था। बोले ये तो ग्वाला है, गाय चराया चोरी किया, इसकी पूजा थोड़ी होगी, पूजा करनी है तो पितामह भीष्म की करो, बेचारा ब्रह्मचारी तो रहा और क्षत्रिय शिरोमणि है। भीष्म जी बोलो आप क्या चाहते हो, भीष्म ने क्या कहा, भीष्म खड़े हो गए और कहा आप सब लोग क्यों टाइम पास कर रहे हो, जैसे आकाश में ताराओं के बीच पूर्णिमा का चांद शोभा देता है, इसी सभा में द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र बैठे हैं और आप लोग किसकी पूजा बोल रहे हो, पूजा द्वारकाधीश कृष्ण की होनी चाहिए। जब अग्रिम पूजा के हित माने भीष्म पितामह माधव को, महाभारत में आया था ना ये, जब अग्रिम पूजा के हित माने भीष्म पितामह माधव को, सब मान गए सब मान रहे बस केशव को, बस केशव को। आज मनुष्य जन्म धन्य हुआ, सब निश्चिंत ही निश्चिंत हुए कर पूजन अर्पण चरणन को, सब धन्य कहे सब धन्य हुए और धन्य करे मानव भव को। माधव की पूजा करके आज मनुष्य जन्म सफल हो गया, ऐसा ऋषि मुनियों ने देवताओं ने सभी ने मान लिया। वो नहीं माना तो उसका गला तो कट गया, आप कटवाना चाहते हो आपके परिवार का समाज का किसी का, तो नहीं कटवाना चाहते ना उसको बोलने का कृष्णस्तु भगवान, जो नहीं मानता उसका कट जाता है। और वही पितामह भीष्म ने उस दृश्य को राजसूय सभा में हरिदास युधिष्ठिर के दृश्य में देखा था और आज बाण सैया पर कुरुक्षेत्र में सोए है तो याद करते हैं, मुनि गण निपवार्य संकुलनंता सदसि युधिष्ठिर राजसु हरि गण निपवार्य संकुलनंता सदसि युधिष्ठिर राजसु।
अर्हणम उपपेद ईक्षणीयो मम दृषि गोचर एष आविरात्मा अर्हणम उपपेद ईक्षणीयो मम दृषि गोचर एष रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुर अलक कुला वृतानन्नाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या त्रिभुवन कमन
कहते हैं कि आपका वो तीनों लोकों में कमनीय मनोहरणीय वो दिव्य स्वरूप रवि कर गौरव राम, जैसे सूर्य की किरण होती है सुबह सुबह, आप देखो हल्का सा पीला होता है, सुवर्ण वर्ण का सोने जैसा, आपका पीतांबर कैसा है, सूर्य की किरण जैसा चमचमाता है, और अलक कुला आपके पूनम के चांद जैसे मुखड़े पर आपके काले घुंघराले बाल, ऐसा लग रहा है मानो काली घटा से पूनम का चांद खिल रहा हो, और उसमें भी आपके मुख चंद्र में ये लाल लाल होठ, आपकी कमल जैसी आंखें, और उस रूप को मैंने राज सूर्य में देखा था यज्ञ में, और आज उसी स्वरूप से हे द्वारकाधीश आप मेरे नयन पथ में पधारे हैं, अपना दास मानकर मुझे जब अंतिम वेला में मैं आपके पास नहीं आ सकता लेकिन मैं आपको याद करता था, आपका कीर्तन करता था, तो आप मुझे यहां आ गए, जब मैं नहीं आ पाया तो आप आ गए, ये आपकी करुणा है, कैसे भूल सकता हूं माधव आपके इस रूप को। पितामह भीष्म राज सूर्य सभा में याद करते हैं। भक्तों इस तरह भगवान श्री कृष्ण के दासों में, चाहे क्षत्रिय हो, देवता हो या मनुष्य हो, जितने महान व्यक्ति हुए हैं सब ने माना है, यहां तक कि प्राचीन की बात छोड़ो, अर्वाचीन जो आचार्य है श्रीपाद रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य या वल्लभाचार्य, या फिर आचार्य शिरोमणि के रूप में आए स्वयं भगवान होते हुए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी, सबने माना गोपीर भर्तु पद कमलयो दास दासान, हम दास है ये स्वीकार करते हैं, यही भक्ति का सार धर्म स्वरूपगत धर्म बात हो रहा है, दिखाया सिखाया आचार्य, बस इसीलिए साध्य शिरोमणि यहाँ पर राय जी कह रहे कि दास्य, भगवान का दास बन जाना, दास मानना, यही पूर्ण सार वस्तु है। राय जी को लगा कि बस हो गया अब तो, क्योंकि मैं कहां से कहां चालू किया था, लेकिन प्रभु कहे ए हो होय आगे कह आर राय कहे सख्य प्रेम सर्वसाध्य सार। बोलिए सभी, प्रभु कहे ए हो होय किचु आगे आर साख्य प्रेम सर्वसाध्य सार। इसके आगे महाप्रभु यह है कि भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा मानना, अपना मित्र मानना, अपना फ्रेंड दोस्त मानना, अपना यार, क्या क्या अर्थ शब्द किए जा सकते हैं, पर्याय सभी है ना, आजकल चल रहा है यार। ये सर्वसाध्य सार है। अच्छा तो फिर दास में हय दास है, लेकिन महाप्रभु संतुष्ट क्यों नहीं है, जबकि आपने इतनी महिमा दास की बताई,
सुखी हो गया, शांत हो गया, पा गया, इतना वर्णन हो गया, तो फिर आगे क्यों? और हरिदास वर्य गिरिराज का श्लोक भी मैं आपको बता, 10:21-18 है, जो वेणु गीत का है, लेकिन वो दास के, क्योंकि हम उसमें रहेंगे तो अध्याय बढ़ेगा नहीं। आज हमें चंड गोविंद प्रभु पूछ रहे थे कि इस अध्याय में प्रभु जी 300 श्लोक है और आप 60-70 श्लोक पर है, कितना पूरा करोगे? मैं बोला नहीं प्रभु जी, हम लोग 75 नंबर श्लोक पर है और 100 करेंगे कल तक। इस सत्र में कितना श्लोक व्याख्या होगा? सदी तो करेंगे, 99 पे आउट होने वाले है नहीं, और 100 में भी नॉट आउट रहेंगे, आउट नहीं फिर कभी लेकिन 100 तक करेंगे, 100 श्लोकों तक व्याख्या करेंगे। क्यों? क्योंकि 100वें श्लोक में राधा रानी की महिमा है और वो कल होगी, क्योंकि राधा अष्टमी आ रहा है, वो माधुर्य की बात है। लेकिन आज तो हम सख्यों में है, लेकिन दास से निकले तब सख्यों में जाए ना। लेकिन चलो दास में है, लेकिन संतुष्ट क्यों नहीं है? रंगनाथ उपासक की बात, यहां तो कोटेशन दिया गया यमुनाचार्य का कि दास मान लीजिए, बना लीजिए, ओके, लेकिन दास में वैकुंठ में जाके दास बनेगा, लेकिन दास में भय है, गौरव है, संकोच है, पूर्णता प्राप्त नहीं होती। इसीलिए कोई वैकुंठ जाए, वहां भगवान विष्णु की प्राप्ति उसे होगी, लेकिन उसे क्या बनना पड़ेगा? दास। वो विष्णु को गले में हाथ डाल के ये नहीं कहते चलो आज थोड़ा जो चौपड़ी जाते हैं, ऐसा नहीं बोल सकता है, क्योंकि वहां साख्य नहीं है, वैकुंठ में साख्य नहीं है। वो कहां है?
मरुवन रावण छे वैकुंठ,
ये हमारे नरसिंह मेहता ने गाया गुजरात में कि मैं वृंदावन में जाऊंगा क्योंकि वहां साख्य है, और साख्य में क्या होता है? वहां भय नहीं होता, एक दोस्त अपने दोस्त से डरता नहीं है, भले उसका दोस्त प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन वो जब साथ में, अरे ये नहीं कह सकते जाम पर जाम मारता है, दोस्तों आपस में क्या क्या करते हैं आप सब जानते हैं, लेकिन वो कुछ भी बोलता है दोस्त को, है ना, उसको उपमा नहीं देता, राजाधिराज महाराज, अरे यार चल, बोलता है कि नहीं दोस्त? भय नहीं उसको, संकोच नहीं होता, और ये नहीं उसको गौरव नहीं प्राप्त होता, मानता है कि है लेकिन मेरा यार है। जय श्री राधा गिरिधारी ललिता विशाखा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा कलि पावन अवतार निताय गौर सुंदर की। भगवान अभी शयन करने जा रहे हैं, लेकिन आप लोग जागिएगा। भगवान तो लीला करते हैं, ऐसे विचार किया जाए तो हमारे पंडरपुर के शयन तो हो ही चुका है, 4 महीना भगवान सोते हैं, बोलो ऐसा कहते हैं ना, देवपुड़ी एकादशी तक भगवान का शयन चलता है, लेकिन ये तो उनकी लीला है। हमारे संतों ने कहा है कि भगवान शयन नहीं करते, योग निद्रा होती है, उसकी क्या होती है? योग निद्रा। योग निद्रा मतलब ये हमारा तमोगुण वाला आलस निद्रा वाला शयन नहीं है, योग निद्रा का फिर और अर्थ करो, योग निद्रा तो समझ में नहीं आता, तब वृंदावन के संत बड़ा सरल कहते हैं कि भगवान शयन नहीं करते, भगवान सबसे छुट्टी लेकर शयन का बहाना करते हैं, वास्तव में जो उनका कीर्तन कथा करता है उसका स्मरण करते हैं, अंदर रह रहे वो स्मरण कर दे कि हाँ भाई कौन बैठा है अभी, कौन सोया है, कौन क्या कर रहा है। शुद्ध भक्तों का क्या करते हैं? स्मरण करते हैं, भक्त भगवान का स्मरण करते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान भक्त का स्मरण करते हैं। राय कहे साख्य प्रेम सर्वधर्म सार, सारे धर्मों का सार साख्य है, क्यों? क्योंकि उसमें भगवान और अधिक प्राप्त होते हैं। वृंदावन में भगवान जब पृथ्वी पर राम बन के कृष्ण बन के आते हैं, तब कई भक्तों ने साख्य रस का उसके साथ प्रेम पाया है, आस्वादन किया है। लेकिन हम कृष्ण अवतार की बात करें जिसमें साख्य पूर्ण स्तर पर है, रामादि अवतार में भी साख्य है लेकिन मर्यादा है, लेकिन कृष्ण अवतार में पूर्ण साख्य है। पूर्ण साख्य है तो क्या है? साख्य प्रेम सर्वसार बताया गया, भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान कृष्ण चाहते हैं स्वभाव से,
सखा मोरे सख्य करे स्कंदे आरोहण,
मेरा सखा श्रीराम मधुमंगल मुझे अपना यार दोस्त मान के मेरे कंधे पर चढ़ जाता है और क्या कहता है,
तुम्ही कौन बड़ लोक तुम्ही आमी सौ,
क्या रे ए नंद के पूरा नहीं बोलते अपने कहे ना फलाना ना
गुजराती में
बापा ना नाम थी ए नंद के मतलब कौन बस ऐसे ही ए कनुआ क्या क्या बुलाते हैं इनको। और जिसके विषय में अभी आपने सुना रमा शंभु ब्रह्मा गणेश गोविंद महादेश्वर, इधर ये क्या करते हैं सब इसको दंडवत मारते हैं, शिव ब्रह्मा इंद्र सूर्य चंद्र इसकी आज्ञा पे चलते हैं, यस्या गया ब्रह्मति संवृत काल चक्रो, और उस गोविंद को मधुमंगल कहता है घोड़ा बन और उसके ऊपर चढ़ जाता है, ये साक्ष्य है। और भगवान को आनंद आता है, ऐसा नहीं कि दुख लगता है। अगर ऐसा न बोले, जिस भगवान को भोग लगाने के लिए हम दास भक्त लोग क्या करते हैं साफ करते हैं धोते हैं उस अन्न को या उस फ्रूट को, किसी की नजर ना लगे, कोई छूना नहीं चाहिए, कोई देखना नहीं चाहिए, कोई खाना तो चाहिए ही नहीं, और वो भगवान के आगे लगा के तुलसी डाल के दंडवत मारते हैं। और मधुमंगल क्या कहता है, कन्हैया इधर देखो वो बंदर देखो, कन्हैया देखते बंदर, उसकी छाली उसकी थाली में से लड्डू उठाया, छले भले लड्डू खाए श्री मधुमंगल, छले भले कृष्ण कहते हैं मेरा लड्डू किधर गया, मेरा लड्डू किधर गया, वो लड्डू तो इसके पेट में चला गया था मधुमंगल को, बोले मेरा लड्डू कौन लिया, बोले तू खा गया होगा भूल जाता है, लड्डू बाद में खाना चाहिए, सारा प्रसाद राइस खा लो दाल खा लो चटनी ढोकला थेपला सब खा लो, बाद में स्वीट खाना चाहिए, लेकिन गुजराती लोग पहले ही स्वीट खा जाते हैं। लेने अंदर वहां बधिक नहीं लाए मारा बाप, तू खा गया हो गया कन्हैया तू भूल गया है, अब ये खा गया ये है, नहीं खाया नहीं खाया देखा तुमको पता नहीं रहा, कृष्ण का तू ही खाया झूठ मत बोल, मैंने नहीं खाया, और बगल बजाता है जैसे बच्चे नखरे करते हैं ना, क्या क्या इशारा करते उसको छोटा दिखाने के लिए, जो प्रसाद राधा रानी बनाई थी राधिकार पक्व अन्न विविध व्यंजन, राधा रानी बरसाने से आई थी या तो फिर अपने ससुराल जावट से आई थी, यशोदा मैया ने कहा था कि हमारे कन्हैया के लिए आप भोजन बनाओ, क्योंकि दुर्वासा ने बोला है कि तुम्हारे हाथ का खाएगा वो आनंद में रहेगा वो सुखी रहेगा तो इसके लिए बनाओ, और वो व्यंजन बनाया था, भगवान खेल रहे थे किसके साथ, भगवान साख्य किसके साथ करते हैं, अपने सखाओं के साथ। जसोमती ने बुलाया कि आओ लेकिन आए नहीं, नंदर निर्देशे वैसे गिरीवर धारी, नंदर निर्देशे गिरीवर धारी, देव सह सखा वैसे सारी सारी, और सारे सखा क्योंकि माता की बात माने, लेकिन नंद बाबा ने कहा एक कन्हैया, दाऊ ने कहा आज मार नहीं खाना है तो सीधा चल, तो दाऊ जी कृष्ण मधुमंगल शत्रक भद्रक तो कृष्ण श्रीराम सब सखा मंडल एक दो नहीं लाखों, नंद आंगन बहुत बड़ा था भक्तों, लाखों सखा आपस में बैठ गए कहां पर, भोग मंदिर में, भोग मंदिर वैसी करो ये भोजन, भोजन लीला हो रही है, और उस भोजन में कहा कि कौन ले गया कौन ले गया, तो श्रीराम की थाली से उठा लड्डू है मधुमंगल ने उसकी थाली में डाल दिया, ये रहा तेरा लड्डू कहां ढूंढ रहा है तो इधर उधर। अब जिस भक्त देखो साक्ष्य में दास्य तो ये सुन समझ नहीं पाएगा, ये बोले ऐसे थोड़ी होता है, हमको तो कोई छूना नहीं देखना चाहिए, भगवान झूठा कह रहा है, जिस भगवान को हम दंडवत मारते उसके ऊपर ये लोग चढ़ जाते हैं। प्रलंब लुल 18वां अध्याय पढ़िए दशम स्कंद का, श्रीराम को उठाया कन्हैया ने, और प्रलंब नाम का जो असुर बालक बना था उसने उठाया बलराम को, बलराम की टीम में थे ना, और कृष्ण की टीम में था, ये असुर बन के आया था, सीधा उसकी टीम में था। जब कृष्ण की टीम हार गई तो घोड़ा बनना था, और घोड़ा बनना था तो सर पर चढ़ाना था, तो श्रीराम को सर पर चढ़ाना पड़ा, पर भगवान घोड़ा बने। अब बताइए शैव्य पुष्पक जो बाहुलक जिस पर घोड़े लगते हैं, दारुक जैसा सारथी, गरुड़ जैसा जिसके पास वाहन है, और त्रिलोकी का ईश्वर है, और अपने सखा के लिए क्या बन जाता है, घोड़ा बन जाता है, दाव देते हैं। यह साक्ष्य रस, इसलिए हमारे ब्रज के संतों ने गाया, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। कमला जी, कमला मतलब लक्ष्मी, जिनके चरण कसूती है, बड़े बड़े शिव ब्रह्मा जिनको दंडवत मारते हैं, लेकिन उनको गोकुल में गेंद लेकर, उच्च सखाओं के बीच भगवान क्या खेलते थे, पूरा विश्व ब्रह्मांड जिनके रोम से निकलता है, वे भगवान से कृष्ण चले रहने दो, वो भगवान से कृष्ण छोटी गेंद लेकर दाव देते हैं, और कभी कभी नहीं देने पर सखा उसको डांटते हैं और बोलते हैं गेम से आउट, बाहर निकलो। और यहां तक वर्णन है, जिस कृष्ण का ये ऐश्वर्य है, मैं कभी कभी हमारी कथाओं में इस पद को गाता हूं, स्मरण कराता हूं, ब्रह्मा मोह की ओ पछतायो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, मान इंद्र को दूर भगायो। क्या क्या किया कृष्ण ने गोकुल में, शिव जी दर्शन के लिए आए कैलाश से, ब्रह्मा मोह किया चक्कर में आ गया, और इंद्र का तो मान ही उतार दिया गिरिराज धारण करके, ऐसो वैभव वालो खेलन में पिट जाए, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूं मैं ना। तीनों लोक में ऐसा ठाकुर नहीं मिलेगा जिसकी इतनी बड़ी बड़ी पूजा होती है, और वो अपने भक्तों के मधुमंगल कभी पीटता था इसको कि सारे दाव देता नहीं है, माखन खाना है तो आ जाता है, दाव लेना है तो आ जाता है, जो अपनी बारी आती है तो मैं नंद का लड़का हूं, बड़ा आदमी, ऐसा करके भाग जाता है, पीटो इसको, और कृष्ण को नीचे मुंडी करके ऊपर मधुमंगल बैठ जाए, सब भक्त मारो मारो इसको। अब देखो ब्रह्मा जिसको दंडवत मारता है और एक सखा उसको पीटते हैं, लेकिन भगवान आनंद लेते हैं। अच्छा है? पूरे विश्व ब्रह्मांड के गुरु है, व्यास जी ने क्या लिखा, वसुदेव वसुतम देवम कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। और वे जगत गुरु जब सुबह सुबह गाय को चराते हुए गोपाल बन के वन में जाते हैं, तो श्रीराम कहते हैं, कन्हैया क्या है, बोले इधर आ, तुझे जीवन में बस केवल गाय ही चराना है कि कुछ आगे बढ़ना है, कुछ सीखना है कि नहीं, आगे जाके शादी करना, सिटी में जाएगा, घर का घर लेना बनाना, बस गाय भैंस चराता रहेगा, बोले नहीं, कुछ कुछ नहीं। मित्र लोग हेल्प करेंगे तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं, मित्र ही हेल्प करता है ना भाई बिजनेस में, बोले क्या कुछ करो हेल्प, बोले आज से सुन ले मैं तेरा गुरु। भगवान ने कहा हाँ तू मेरा गुरु, क्या सिखाओगे, ये तू बंसी बजाता है ना, और बंसी बजा के सबको अपने वश में करता है, तू जानता है, तू उससे अच्छी बंसी में बजाता हूं। अच्छा भैया सीखना है मेरे से, सिखाओ, आप गुरु हो, हम आपके दास है, सिखाओ 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 सिखाओ, ऑर्डर करने का, तद विधि गीता में ये डायलॉग मारेगा, फिर प्रणाम करो पहले मुझे। अब भगवान जगत गुरु श्रीराम को प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम करके बोलते अब सिखाओ, अब सिखाओ, सेवा करो, हमें को आसन दो, हमारे चरणों में बैठ के कुछ मालिश तालिश कर दो, गीता में बोलोगे ऐसे थोड़ी शोभा देगा, पहले सीखना पड़ेगा। तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति, दे क्या तब ज्ञान देंगे ना, ऐसे ही ऑर्डर करने से ज्ञान मिलता है, हाँ भैया माफ करो। और श्रीराम की सेवा में लग के भगवान ने कहा कि अब तो हो गया, अब तो कृपा करके एक सूर लगा दो। जैसे ही श्रीराम ने बंसी पर सूर लगाया, कृष्ण को कहा ध्यान से सुनना, हाँ महाराज ध्यान से सुनेंगे, देखो पहले ऐसे पकड़ते हैं बंसी, अब पूरे विश्व अखिल कला गुरु को यह सिखा रहा है, और भगवान सीख रहा है,
और बंसी ऐसे पकड़ते हैं, होठों से ऐसे लगाते हैं और इसमें ऐसे फूंक मारते हैं। अब जैसे फूंक मारी ना, उसमें आवाज तो निकला, उसी समय मधुमंगल आया। बोले क्या हो रहा है, क्या हो रहा है सब? कृष्ण ने कहा कुछ नहीं, बस हम बंसी बजाना सीख रहे हैं, श्रीराम हमारे गुरु है। मधुमंगल ने बंसी छीन ली पहले तो, उसको एक ऐसे झापट का ऐसा इशारा किया, क्या तू गुरु हो गया? मैं जब तक यहां जिंदा हूं तू कैसे गुरु हो गया? ब्राह्मण मैं हूं, मैं ब्राह्मण जाति का व्यक्ति गुरु, तू गाय भैंस चराने वाला तू गुरु होती, श्रीराम भी तो गोप है। अरे तुम लोग अपने आप में ही गुरु चला हो जाओगे तो हम ब्राह्मणों का धंधा कैसे चलेगा? जब तक मैं जिंदा हूं ब्रज में कोई और गुरु नहीं हो सकता, ब्राह्मण जन्म से गुरु होता है और इसलिए गुरु मैं हूं। लाओ बंसी इधर। अब ऐसे झपट के छीन ली बंसी और इसको कहते श्रीराम को तो बुद्धि नहीं, तेरे को तो बुद्धि होना चाहिए ना कन्हैया कि किसको गुरु बनाया जाए। ऐसा ही गुरु बनाएगा, ऐसा ही रहेगा तू, आओ हम तुमको सिखाते हैं। भगवान ने कहा मधुमंगल ये लड्डू नहीं है, ये खाने की चीज नहीं है, ये बजाने की चीज है और तेरे अंदर ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं हुआ है, तू मेरे को बोलेगा? मधुमंगल ने कहा तू ज्यादा आवाज नहीं, तब तक तो और सखा आ गए, क्या हो रहा है क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं, श्रीराम रो रहा है। बोले मैं सिखा रहा था, ये झपट लिया, बोल रहा है ये गुरु है। उसने कहा कि आप दोनों गुरु है तो हम लोग सब क्या है? कन्हैया तेरे को गाय चराने का शिक्षा कौन दिया? किसके बल पर तो आता है? मिराड़ वालों ने सिखाया? नहीं, तुम्हारे संग में तो हम तुम्हारे गुरु है कि नहीं? गाय को चराने का सिखाने के लिए गुरु तो है। भोजन कैसे खिलाया जाता है तुझको पता है? हम तुमको खिलाते हैं कि नहीं? सब बोले, सब बोले हम सब गुरु है। कृष्ण ने कहा सारे ब्रजवासी बालको तुम मेरे गुरु और मैं तुम्हारा, तो इसलिए सब गिरिराज के ऊपर चढ़ गए और भगवान नीचे, और भगवान ने सबको लंबी दंडवत मारी और कुछ गड़बड़ किया तो मार भी खाने के लिए तैयार रहे, और बहुत एक दो बार नहीं, 5-25 बार नहीं, हजारों बार कृष्ण को पीटा गया है गोकुल में। लेकिन भगवान को बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि प्रेम है, ये सखाओ का भाव है, बड़ी ऊंची अवस्था है भक्ति की, है जिसको यहां राय जी कह रहे हैं कि सख्य प्रेम सार। और वो सखा लोग कहते थे तू बड़ा छोटा कुछ है ही नहीं, साक्ष्य में सब सेम होता है, अपना होता है। मैं कभी उगार कह चुका हूं इस कथा को, जब कृष्ण ने कंस को अखाड़े में पटका और उसके ऊपर जंप लगा के एक मुक्का दिया, राम नाम मामा का मर्डर, मीडिया वाले सब कैमरा लगाए, कल पेपर में आएगा। और दाऊ स्टैंडर्ड मुस्टिक को मार चुके थे, कंस भी मर चुका है, अखाड़े में दोनों भाई वीर खड़े हैं और दाऊ दादा भी गरज रहे हैं। मारने के बाद भी बल होता है ना, पहलवानी आ गई थी ना उस समय, मूड हो गया था, तब तक बोल दिया कोई है माइकालाल जो हमसे लड़ सकता है? कृष्ण ने ऐसा बोला, स्टेडियम में बैठा था मधुमंगल, बोले साला मैं बैठा है, तू ऑर्डर करता है उधर से। नंद बाबा ने किधु, नंद बाबा ने बोला तू रहने दे भाई, अभी तेरा सीन नहीं है। बोले नहीं, वो क्या बोल रहा है, इसको मैंने यमुना के तट पे 1000 बार पटका है, अभी मथुरा में आ गया तो अब होशियारी कर रहा है, अभी मैं जाता हूं बस। नंद बाबा ने पकड़ के रखा, नहीं तो ये जाता था उधर बोल बीच में, और कृष्ण को सबके सामने पीटता था, क्योंकि कृष्ण कुछ कर भी नहीं सका, ये तो लाज रख ली सका उन्हें, बोले तू आए रेवा दे भाई, तुम्हारा जो भी बल है वो नीचे प्रसाद में दिखाना, यहां रहने दे बस। कभी कभी कुछ भक्तों को बोलना पड़ता है। ये खाने की चीज नहीं है, लेकिन मधुमंगल करो आगे जाते तो भगवान को प्रेम से मार खानी पड़ती, क्या करें? तुम ही कौन बड़ो लो, कौन बड़े हो तुम ही आमी साम। और इसी बात के लिए बड़े बड़े सखा सुखदेव गोस्वामी 12वें अध्याय में 10वें स्कंद में वर्णन करते कि सब सखाओं के साथ भगवान नाचते थे गाते थे। देखो कृष्ण जो है ना पूर्ण पुरुषोत्तम है, शिव ब्रह्मा आरती उतारते, कमला सेवा करती है, बहुत सब कुछ है ऐश्वर्य, लेकिन जो आनंद कृष्ण को वृंदावन में अपने सखाओं के साथ आता था वो कहीं। भगवान वृंदावन में जो चलते हैं सखाओं के साथ गायों के साथ,
बंसी बजाते हुए, गो चराते हुए, ऐसी स्टाइल से द्वारका में नहीं चलते। द्वारका में तो बड़े शालीन, क्योंकि क्षत्रिय है भाई, वसुदेव का लड़का है, जगत गुरु है, मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्यापार सर्वस सिखाना है, इसलिए सीरियस चलते थे। लेकिन गोकुल में जैसे मत वाला गजराज चलता है, ऐसी की तैसी किसी की भी। इसलिए वृंदावन का वर्णन क्या किया गया है ब्रह्म संहिता में, कथा गानम, इसके बाद नाट्यम गमनपि, वहां पर चलना नहीं होता था, क्या होता था, नाच होता था। और इस बात को वेणु गीत में सखियों ने कहा है कि हे सखी, ये जो कृष्ण के सखा है ना, मधुमंगल श्रीदाम, उनका जो सौभाग्य है ना, ऐसा सौभाग्य हमें नहीं मिला, क्योंकि हम तो यहां से श्याम सुंदर बंसी बजाते हुए चले जाते हैं तो एक झलक भी नहीं देख पाती है, और ये सखा कितने सौभाग्यशाली है कि 8-8, 10-10 घंटा कृष्ण के साथ चिपके रहते हैं, उनको देखते रहते हैं, और हमको तो कितना एक एक नजर भी नहीं मिलता। अक्षणवता फलमिदं न परम विदाम सखे पशु ननु विवे शयतोर्वयस्ये। ये वेणु गीत दशम स्कंद का 21वां अध्याय का वेणु गीत का मतलब 6 नंबर का श्लोक, वेणु गीत के 1 नंबर का श्लोक कि है सखी, पशु ननु, पशुओं के साथ, पशुपाल के साथ जब भगवान जाते थे ब्रज में, वक्त्रम ब्रजे शसुतयो अनुवेणुजस्कम नैवानिपीतमनुरतकटाक्षमोक्षम। हे सखी, कृष्ण का ये बंसी बजाता हुआ, सखा मंडली के बीच चलता हुआ, ये जो बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, इस मुख को देखना ये आंखों का सौभाग्य है। क्या सिंगार है, कृष्ण के यहाँ मोर पीच लगाया गया पगड़ी में, नए नए आम के वृक्ष के पल्लव लगाए गए, जूत प्रवाल बरह सबकोत्पलाब्ज माला नुरक्त परिधा न विचित्र वेश। ये सारी बातें वहां आई है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, रंगे यथा नटवरो क्वच गाय मानो। सखी, जब ये श्याम सुंदर अपने सखा के साथ होते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूड में होते हैं, और ये आप लोग समझ सकते हो, हम भी समझ सकते हैं। आप लोग देखिए, अपने पिताजी के साथ रहते हो ना घर में, माताजी के साथ रहते हो, बॉस के साथ रहते हो, या फिर अपनी पत्नी के साथ भी, लेकिन जितना बिंदास आप अपने फ्रेंड के साथ होते हो, उधर आप देखिए फ्रेंड लोग जब मिलते हैं बिंदास होते हैं ना, जो भी बोलो, जो भी खाओ, जो भी नाचो, सब फ्री माइंड। तो सखी, ये जो रंगे यथा नटवरो, ये जो नटवर है ना, ये अपना रंग दिखाता है किसके बीच में, इन सखाओं के बीच। तो कृष्ण की जो ये मतवाली चाल है, कृष्ण की चाल की दो विशेषता, दो उपमा हमारे भागवत में आई है, एक मतवाला झूमता हुआ हाथी, क्या चाल शान अलबेली है गज लाज रहे रस्ते रस्ते, हाथी भी शर्मा जाते हैं कि हमको भी ऐसा चलना नहीं आता। और दूसरा, जब मान सरोवर में कोई हंस जहस विहार करता है, ऐसे चलते हैं भगवान ब्रज में। और ये चाल, ये स्टाइल किसी ने अनुभव किया है या जाना है तो किसने, सखाओं ने जाना। सखा बनती तो हमारा सौभाग्य। ऐसे इनका भाव ऊंचा है, माधुर्य जो सखिया है उसको कृष्ण पूर्ण प्राप्त है, लेकिन आया है ना चैतन्य चरितामृत में, प्रेमेर स्वभाव जहां प्रेमेर गंध सही माने मोर नाही प्रेम। जो प्रेमी होता है उसको ऐसा ही लगता है कि मुझ में प्रेम, और खुशी में थोड़ा भी होता है तो उसे ज्यादा लगता है। सखियों का बड़ा ऊंचा प्रेम है, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लग रहा है। लेकिन बाह्य रूप से विचार करें तो सुखदेव जी ने कहा है भक्तों, जो श्लोक यहाँ राय जी बोलेंगे, कि सख्य प्रेम सर्वसाध्य है, और महाप्रभु ने कहा था कोई भी बात बोलो श्लोक से बोलो। इत्थम सताम ब्रह्म सखानुवृत्त्या, बोलिए इसके बात करिए, इस श्लोक को साख्य प्रेम भक्ति का विशेषता बताते हुए बोला गया है। आप सभी बोलिए,
इत्थं सखा सतां ब्रह्म सुखानुभृत्या
इत्थं सखा ब्रह्म सुखानुभृत्या
दास्यं गताना परदेवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण सार्धं विजर्हो कृतपुण्यपुञ्जा
पाठ भेद से साकम भी है। यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र जिनके श्री विग्रह का ध्यान धरते हैं ब्रह्म सुखान अनुभव करते हैं और दास्य गता नाम पर देवते ना बड़े बड़े परम लोकपालीय देवता जिनके दास बनते रहते हैं और उसी भगवान श्री कृष्ण जब अपनी अतरंगा माया के अधीन होकर ब्रज में प्रकट होते हैं तो इस नर लीला में सबसे सौभाग्यशाली उन देवताओं से उन योगिंद्रों से उन मुनिंद्रों से सबसे सौभाग्यवान कोई है तो ये सखा है। क्यों? क्योंकि कृत पुण्य पूंजा, पता नहीं इन्होंने कितना पुण्य का पर्वत खड़ा कर दिया है कि कृष्ण उनके सखा बने हुए हैं। जब खेलते थे तो सखाओं के साथ सब खेल होता था। इसके आगे वाले सब अध्याय श्लोकों में इसका वर्णन है। ये 12वें अध्याय दशम स्कंद का अगासुर वध वाली कथा का शुरुआत है। इसके आगे 10 श्लोक है जिसमें वर्णन आया है कि कृष्ण सखाओं के साथ क्या क्या खेल करते थे। साक्ष्य रस को लूटते थे, कृष्ण खड़े रहते थे तो सब सखा एक कंपटीशन करते थे कि चलो कृष्ण को पहले कौन छुएगा। कृष्ण गिरिराज की तलेटी पर ऊपर खड़े हैं, गिरिराज के शिखर पर, और सब सखा कई किलोमीटर दूर है तो सब रेस लगाते थे कि कृष्ण को पहले कौन टच करता है। अहम पूर्वम इति संस्पृश्य रे मिरे, सुखदेव जी कहते कि मैं पहले छूंगा मैं छूंगा, ऐसा करके सब लोग 1 2 3 दौड़, जैसे हम लोग महाप्रसादे गोविंद गोविंदे दौड़। क्या अनाउंस हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन जाने, ऐसे होता है ना, ऐसे दौड़ लगाते थे भागो। क्यों? कृष्ण को छूना है। मधुमंगल बोले पहले मैं छूंगा, वो तो छू ही नहीं पाएगा, पेट जिसको होता है वो कुछ नहीं कर सकता है। होड़ लगती थी, मैं छूंगा, और कई सखा एक साथ कृष्ण पर चपकते थे, छू लेते थे, पकड़ लेते, मैंने पकड़ लिया मैंने पकड़ लिया। अब डिसीजन कौन लेगा? एम्पायर दाऊ दादा है। दाऊ बोले मैं तुम लोग के बीच में पड़ना नहीं चाहता, थर्ड एम्पायर रखा है उसको। कृष्ण ही बोलेंगे, अब कृष्ण के लिए समस्या किस सखा को हाँ बोले किसको ना बोले। बोले तुम सबने मुझे पकड़ लिया, मैं तुम्हारे अधीन हो चुका हूं। किसको हाँ करे किसको ना करे, ये आदि गुरु जगत गुरु के लिए भी डिसीजन देना असंभव हो जाता है। ये है साक्ष्य रस। इसको सुन के चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अब तक क्या कह रहे थे, ये हो बाह्य, फिर क्या कहे, ये हो हय, लेकिन इस साक्ष्य रस को सुन के प्रभु कहे ये हो उत्तम, इसको क्या कहेंगे, आगे करिए इसको। अब ये है नहीं बोला, ये क्या बोला, उत्तम। अब तक क्यों क्या कह रहे थे, अब तक है बोल रहे थे, उसके पहले बाह्य बोल रहे थे, लेकिन ये है नहीं, ये भी है ऐसा नहीं, ये सर्वश्रेष्ठ है। ये जो अभी बोला ना साक्ष्य वाला रस, वो क्या है, प्रभु कहे ए हो उत्तम आगे कह आर, प्रभु कहे हो आगे कह आर, प्रभु कहे ए हो उत्तम आगे कह आर, कहे वात्सल्य प्रेम सर्वसाध्य सार, राय कहे वात्सल्य प्रेम सर्वसाध्य सार। राय ने कहा, इसके आगे ये है महाप्रभु कि वात्सल्य रस प्रेम जो है वो सभी साध्यों का सार। वात्सल्य मतलब कृष्ण को अपना पुत्र मान के, अपने आप को उसके माता या पिता मान के उसकी सुरक्षा करना,
उसकी देखभाल करना, उसको सुख देना, इस तरह का जो भक्ति है वो श्रेष्ठ है, ये कहा जा रहा है। और इस बात को चैतन्य महाप्रभु जी ने अन्य प्रसंगों में चैतन्य चरितामृत में कृष्ण भाव में बोला है, माता मोरे पुत्र भावे करे न पालन, अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। पूरे विश्व ब्रह्मांड का मैं बाप हूं, लेकिन नंद मुझे अपना लड़का मान के उसके अपने को अपना बाप, मुझे मेरा बाप मानता है। माता महस्य जगतो पिता धाता, मैं गीता में बोला हूं कि मैं सबकी मां हूं, मैं हूं जननी, मैं हूं अहम बीज प्रदा पिता। और उस द्वारकाधीश कृष्ण गोविंद को माँ यशोदा क्या कहती है, मेरा बेटा है, पूरे ब्रह्मांड का बाप लेकिन यशोदा का बेटा। और उसको क्या करना है, कहीं बीमार ना हो जाए, जैसे ही कहा एकदा क्रीड मानास्ते मात्र निवेदन कृष्णम बक्षित्वा अम्ब मुदम बक्षित्वा, माटी खाया तेरा लाला। तो माता यशोदा को चिंता हो गया, सुखदेव जी ने कहा है करे गृहित्वा उपलब्य सीतेषिणी, अपने पुत्र का हित करने वाली, जिसका दिल जिसका हृदय यश और दया से भरा है, ऐसी यशोदा दौड़ी कि कहीं लाला माटी ना खा ले। क्यों? क्योंकि उसका पेट ना खराब हो जाए। अब उसको ये कहां पता है कि इसके पेट में करोड़ों ब्रह्मांड पड़े हैं, वो तो अपना लाला मान रही है। और उसको कहती है व्यादेही सत्य गिरा तर ही व्यादेही, अगर सच बोल रहा है तो मुंह खोल। भगवान सुखदेव जी कहते संभ्रमम, कांप रहे है, डर रहे है, उसको चिंता है कि कहीं गया तो कहीं तो माटी दिख गया तो आज तो गाल पे पड़ेगी, काल का काल डर रहा है, क्योंकि माता का भाव ही ऐसा है, रस ऐसा है। और इसी यशोदा के गुण वर्णन में राय जी इसके विषय में श्रीमद् भागवत के दामोदर लीला के श्लोकों को कोटेशन देते हैं, नंद किम करो ब्रह्म श्रेय एवं महोदय यशोदा व महाभागा पपोयस्यतनम हरि। इसके बाद वाला भी नेमं विरंचिन भवो न श्रीयपि अंगसंश्रया प्रसाद लेभिरे गोपी यस्तं प्राप्त विमोक्तिदा। यशोदा के साथ जो कृष्ण की वात्सल्य रस की लीला है, गंगा के तट पर शुक मुख से वो अमृत मधुरिमा सुन के परीक्षित के हृदय में एक प्रश्न उठ गया कि नंदम किम करो, ये नंद ने क्या पुण्य किया, यशोदा च महाभागा, यशोदा देवी ने क्या इतना महासौभाग्य कैसे उदित हुआ कि पूरे विश्व ब्रह्मांड का बाप बालक उसके यहाँ बालक बन के उसका दूध पी रहा है। विश्वंभर भगवान भूखे हो जाए तो क्या बोलते थे, माँ यशोदा मुझे भूख लगी है, सबको खिलाने वाला, अभी हमने कथा किया ना शिवाजी वाला, सबको खिलाने वाला, भूखा होए तो किसको माँ कहता था, यशोदा। जो सुख देवकी को नहीं मिला वसुदेव को नहीं मिला वो यशोदा पा गई। यशोदा ने ऐसा क्या किया, बाह्य रूप से भी विचार करे कृष्ण लीला के श्रीमद् भागवत के प्रसंगों ऊपर तो वर्णन है कि वसुदेव जी रात में गए और देव यशोदा के बाजू में लाला को छोड़ दिया, कन्या को लेकर वो चले गए। इस पर हमारे ब्रज के रसखान जी ने लिखा है, काहू न चो जुग जागत पायो सो रात जसुमति सोवत पायो। दुनिया जिसके लिए जाग रही है, जप कर रही, व्रत कर रही है, और यशोदा क्या किया, सोई, जागी तो भी जागी तो लाला था, इस लाला के लिए लोग जाग रहे हैं, मंगला कर रहे हैं, फिर भी मेल नहीं हो रहा है, पता नहीं कब मिलेंगे। जो युग चारों युग में योगिंद्र मुनिंद्र जिसको पाने के लिए व्रत तप उपवास कर रहे हैं पाते नहीं है दर्शन, और उस कृष्ण को जसोमती सोए सोए पा गई भागवत के अनुसार। तो फिर पता चलना चाहिए कि क्या यशोदा ने ऐसा किया। और कृष्ण यशोदा पूरे विश्व को आश्रय देने वाले के ऊपर संकट आता था, संकट तो किसके पास जाते थे, गोपियों के हाथ छुड़वा कर लाला मार से बचने के लिए और
फ्री में नचाती थी, गोपिया क्या अर्थ करती थी गोकुल में, एक पैसा नहीं देती थी कमर तोड़वा देती थी श्याम सुंदर का, माखन का लौंदा दिखाती थी और माखन देख के शाम पिघल जाते थे, कहते थे चाहिए, बोले चाहिए, तो बोले थोड़ा ठुमका लगा दे, तो अभी माखन के कारण बोले चलो गोपी 2 मिनट है, ज्यादा नहीं केवल 2 मिनट, और भगवान नाचने लगते थे तो कहते और लाला जैसे यहां पर हो रहा है ना, आगे करो आगे करो, अरे कितना आगे करे, कुछ लोग कुछ भगत तो पूछ रहे आगे कब खत्म होगा। हमारे द्वारकानाथ प्रभु कह रहे थे कि ये कथा तो ऐसी है जैसे हमने सुना था वो गोकुल में गिरिराज उत्सव हुआ, तो और लाओ और लाओ और लाओ, कितना लाए खत्म हो गया, ऐसे यहां पर भी और आगे कहो और आगे कहो, एंड ही नहीं हो रहा है, और नाचो और नाचो। और कृष्ण थक जाते थे नाचते नाचते, फिर कहते जा सारी नहीं देना है तो क्या करे, अभी कमर तुड़वा दी दे नहीं रहा, तब कहते लाला अभी पक्का ये ले लो, और जैसे फिर अब देगी पक्का देगी हाँ, तो फिर जैसे हाथ में लेते हाथ में खा के खाने लग गया तब हाथ पकड़ दी, चोरी किया, तो चोरी कहां किया तूने दिया, बोले ऐसे ही होता है, हम जब जाती है ना यशोदा के पास तो ऐसे ही सिस्टम वहां होता है, इसलिए आज हाथ में आया। और सारी गोपियां उसको पकड़ के, चोरी नहीं किया, कभी किया हो तब ले जाती, कभी नहीं किया है फिर भी ले जाती है, और कहते यशोदा तेरा लाला चोरी किया है, देख हाथ में माखन, देख मुंह में माखन, और देख इसका हाथ हमारे हाथ में, नंगा पकड़ा गया ना चोर, लाला तो ऐसा क्यों करता है, यशोदा प्रेम से पूछती। और कृष्ण उस समय एकदम शांताकारम भुजगशीलम साधु बन जाते हैं, क्योंकि ये जज यही जो भी डिसीजन होगा यही होगा, एकदम भोली सी सूरत, एकदम क्या कहते हैं निर्दोष आंखें, मैया सब झूठी है, सब झूठ बोल रही है, लाला तुझे झूठ साबित करके हमको क्या मिलेगा, वो मुझे नहीं मालूम लेकिन झूठ बोल रही है, मैया तू तू इसकी बात मानेगी कि मेरी मानेगी, लाला मुझे पता है तू झूठ नहीं बोल सकता, अरे ये झूठा है यशोदा, तू उसके अपने पुत्र का ही पक्ष लेगी, तू भी मिराड वाली जैसी है क्या, अब जब भी बच्चों में झगड़ा होता है तो अपनी माँ किसका पक्ष लेती है, अपने पुत्र का, तुम भी ऐसी हो क्या। कृष्ण ने कहा चुप, देखो मैया सच ये है कि मैं गोकुल की गलियों में जा रहा था, और जैसे ही गलियों में जहा तो इसका दरवाजा खुला था अपने घर का, तो मैंने जरा देख लिया, चलते हुए नजर तो जा ही जाती जाती है क्या, रास्ते में कोई व्यक्ति चलता है तो आंख बन के चलेगा चलेगा तो गिरेगा ना, तो मैं आंखें खुली रख के चला, गुना किया, बोले नहीं आंखें खुली रख के चलना चाहिए, अच्छा इसका घर रास्ते में आ गया तो मेरी नजर चली गई, ये गलती है क्या, बोले ये भी गलती नहीं है, तो फिर जैसे ही मैंने देखा ना तो इसने भी मुझे देखा और उसने मुझे कहा लाला इधर आ जा, अब देखो मैं तू जानती है कोई मुझे प्रेम से बोला है तो मैं रह सकता हूं, मैया जब मैं घर से चलू ग्वालिन घर में बुलाए मोय, वो घर में बुलाती है, और जब मैं उसके घर में गया तो मुझे माखन दिखाया, अब माखन दिखाया तो मुझे कहती है लाला थोड़ा लोगी क्या, प्रसाद है प्रसाद है, तो मैंने कहा कि चलो भाई थोड़ा दे दो, जैसे हाथ लंबाया तो उसने हाथ पीछे कर दिया और उसने कहा कि तू मेरी चोटी बना के देगा तो दूंगी, अब मैंने उसकी चोटी बनाने की ट्राई किया, माखन नहीं दिया, नाच दिखाएगा तो डांग माखन दूंगी, नाच दिखाया फिर भी नहीं दिया, और फिर मैं उसको हाथ छुड़वा के भागा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, और देखिए पूरी पहलवान जैसी, और मैं कोमल देख लाल लाल हो गया मेरा हाथ मेरी कलाई, और अब याके बोल रही है कि लाला ने चोरी किया, और ये मुझे चोर साबित करके मेरा एंगेजमेंट होने नहीं देना चाहती है, इसका प्लान है, हमारी बात चल रही है ना बरसाना, अभी इसको प्रॉब्लम है, अरे लाला हमको क्या प्रॉब्लम होगा, तेरा 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 रिश्ता तुड़वा के तेरा एंगेजमेंट नहीं होने दे, हमसे क्या लाभ है, तुमको लाभ है तुमको करना है मुझे सब पता है, तेरा प्लान चलता है सर, अरे बाप रे बिना शर्म का इतना छोटा इतना बड़ा बात बोल रहा है, फिर से ऐसा बोला ना यशोदा के सामने मार खाएगा, और ऐसा बोल के जाता है तो भगवान श्री कृष्ण यशोदा के पल्लू में छुप जाते हैं, पूरे विश्व ब्रह्मांड को आश्रय देने वाला माता यशोदा के आंचल में पल्लू में, और तब यशोदा कहते हैं सखी बस कितना माखन खाया तेरा, उससे 10 गुना ले जा, लेकिन हमारे लाला को कुछ नहीं कहना। तो कृष्ण उसकी छाड़ी से पीछे कहते, ले माँ तो मेरी है ना, ले बाबा जी का। आई थी बड़ी कंप्लेन करने यहाँ, निकल चल। अरे यशोदा वह यशोदा है पूरे विश्व ब्रह्मांड को कर्म की डोरी से बांधने वाले कृष्ण को भी क्या किया, बांध दिया। जय बांधो सुर असुर नाग नर मुनि, प्रबल कर्म की डोरी, कर्म की डोरी में बांधने वाले कृष्ण पूरे विश्व को, और इस कृष्ण को यशोदा ने बांध दिया।
जय ना मोह बंधन दुनिया बंधाणी, जय ना मोह दुनिया बंधाणी,
पूरे विश्व को जिसने बांध दिया है, पूरा विश्व काल भी जिससे डरता है, यशोदा बियो दुख लाघव मानम परामृष्ट मृत्यंत तो धृत्य गोप्या, बांध दिया। और कृष्ण कर कुछ नहीं पाएंगे। कुंती कहती है, गोप्या ददे त्वयिता गसिताम तावत याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाख्यम रुदंत मोहु नेत्र। मैंने देखा है आपको, और आप कुरुक्षेत्र में काल बने हुए हो और वहां रो रहे थे यशोदा के सामने। और गोपियां कुछ भी करे, लेकिन यशोदा यशोदा। बहुत सारी लीलाएं हैं भक्तों यशोदा जी के साथ कन्हैया जी। और इस वात्सल्य रस के वर्णन को सुन के ही परीक्षित पिघल गए, बोले बताओ यशोदा ने क्या पुण्य किया। लक्ष्मी जी जिनके दरबार में, जिसकी कृपा कटाक्ष के लिए पूरा विश्व सुर असुर तरसते हैं, और वे लक्ष्मी गोकुल में यशोदा के आंगन में घूमती है कि कहीं मैया हमें अपने लाला के लिए चॉइस कर लेना तो हमारा भी भाग्य खुल जाए। ये यशोदा के भाग्य को कौन गा सकता है। और रही बात नंद की, अरे पूरा विश्व जिनके चरणों में झुकता है, गंगा जहां निकलती है, वे गोविंद को नंद बाबा कहते थे। हे नंदलाल कन्हैया, बोले क्या है पिताजी, मेरे जो बाहर जाना है खड़ाव लाओ। और भगवान छोटे छोटे हाथों से नंद के खड़ाव चरण पादुका उठा के सर पे रख के धीरे धीरे चलते थे। जिसने एक पैर में पूरा विश्व माप लिया है वामन बन के, वो नंद की दहली नाच नहीं पाते थे। तब नंद बाबा आके उठा लेते थे, आओ लाला। और इसलिए रघुपति उपाध्याय ने कह दिया अडाइल में महाप्रभु के सामने, सुतिम अपरेश कुछ भी हो, दुनिया भारत बंदे भवंत भेजा, सब जिसको जो करना है करे, अहम नंदम बंदे जस्या लिंदे परब्रह्म। मैं तो नंद को प्रणाम करता हूं क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का बाप उसकी गोद में बैठता है। और नंद और यशोदा का कृपा मिल गया तो क्या चाहिए, कृष्ण तो ऐसे ही हो गया। अद्भुत लीला करते हैं भगवान, मधुर है सब मधुर। वेणु मधुरो रेणु मधुरो नित्यम मधुरम भुक्तम मधुरम, सब मधुर गाइए। रेणु मधुरो पानी मधुरा पादो मधुरा, रेणु मधुरा रेणु मधुरा पाणी मधुरा नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं, नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं, मधुराधिपते अखिलं मधुरं, मधुरा। लीला भगवान किसके साथ करते हैं, ब्रज गोपी के साथ या ब्रज गोपी के साथ, लेकिन मधुर है। गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम भूतम मधुरम, गोपी मधुरा लीला।
मधुरम
मधुराधिपते अखिलम मधुरम
भगवान श्री कृष्ण का सब मधुर है, भुक्तम भी मधुरम, रिष्टम आनंद में आना भी मधुरम, श्लिष्टम किसी को आलिंगन दे वो भी मधुरम, उसकी गोपी, उसकी लीला, उसकी वेणु, ब्रज की रेणु, उसके चरण सब मधुराधिपते अखिलम मधुरम।
भगवान की ऐसी मधुर लीलाओं का रस यशोदा और नंद ने लूटा है।
नेयम विरंची, इस प्रसाद को आज तक ब्रह्मा नहीं पाया, न भवो, शंकर जी को भी यह सौभाग्य नहीं मिला। दास बन के दंडवत मारते रहते शिव ब्रह्मा, कैशव इसलिए कहते कव और ब्रह्मा ईश के भी शिव ईश, लेकिन माँ यशोदा उसे गोदी में बिठाती है, खिलाती है, डराती है, कभी बांध देती है, कभी प्रेम क्या नहीं सब करती है। इसलिए सुखदेव जी ने गोपियों के साथ अनंत लीलाए है, लेकिन सुखदेव जी ने गंगा तट पर श्रीमद् भागवत में अपने मुख से किसी नाम लिया है गोपी का, वो यशोदा का, और कोई गोपी का नाम भागवत में नहीं, केवल यशोदा नाम बोला है, क्योंकि वात्सल्य रस की पराकाष्ठा के परम सिद्धि तक, उच्च शिखर तक आरूढ़ हो चुकी है माँ। और कृष्ण को जिसने इतना प्रेम किया वो सामान्य महिला नहीं है, वो वेदों की महिमा है। इसलिए सुखदेव जी के चरणों में निवेदन था कि बताइए क्या पुण्य किया यशोदा ने, ताकि हम भी करें इस सौभाग्य, हम भी इसकी अनुगत्य में आ जाए, यशोदा की दासी बन के हम भी कृष्ण के वात्सल्य रस का लुटे, ये इच्छा जाग जाए हमें, इसलिए आप बताइए। न श्री अपि अंग संश्रेया, उसकी अर्धांगिनी इस भाव को न पा पाई, जिसको प्रसाद ले पी रे गोपी, जिस प्रसाद को माता यशोदा ने पाया है। दुर्लभ भगवान के रूप सौंदर्य को, माधुर्य को, वचनों को, पूरे विश्व को पालन करता है, उसको माता यशोदा सिंगार करती थी, यमुना जड़वा केसर घोड़ी, भगवान को सिंगार सजाती थी, उसको नहलाती थी। बहुत सौभाग्य मिला है भक्त यशोदा जी, और इसीलिए यहां पर कहते हैं रामानंद राय कि ये जो वात्सल्य रस है वो सर्वश्रेष्ठ सार है।
प्रभु कहे ए हो उत्तम आगे कह, राय कहे कांता प्रेम सर्वसाध्य सार।
ये तो एकदम उत्तम बोला आपने, लेकिन इसके आगे भी बताइए क्या है। तब इसने कहा कि इसके आगे ये है कि कृष्ण की कांता बन जाना, उसकी प्रियतमा, उसकी प्रेमिका, उसकी पत्नी बन जाना, ये सर्व साध्यों का सार है। कैसे कैसे सर्व साध्यों का सार है वो हम कल सुनेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं टाइम सीमा रेखा में चला गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम।